بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششٹ کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शुक्रवार है, दिसंबर की 4, रबीउ सानी की 18 और आज़र माह की 14 तारीख। हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है parstoday.com/hi। हमारा फेसबुक है facebook.com/irib hindi/। और अब कार्यक्रमों की रूपरेखा। विगत की ही भांति कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आपका मनपसंद कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, पत्र संसार। और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री ने कहा है कि बाइडेन सरकार को अपनी सद्भावना सिद्ध करनी चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अनावश्यक सूचनाएं जारी करने के संबंध में IAEA को चेतावनी दी गई है। अमेरिका की 80 संस्थाओं ने बाइडेन से यमन युद्ध का समर्थन न करने का आह्वान किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय में कनाडा के राजदूत को आज तलब किया गया। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान में कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 347 हो गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान में 13,341 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,996 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सीमा सादात लारी ने बताया कि ईरान में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 10,16,835 हो चुकी है। मुस्वी लारी का कहना है कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 49,695 हो गई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि जो बाइडेन सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 का पूरी तरह से पालन करके ईरानियों के खिलाफ ट्रंप के आर्थिक युद्ध को रोकते हुए अपनी सद्भावना साबित करनी चाहिए। मोहम्मद जवाद जरीफ ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अगली अमरीकी सरकार की जिम्मेदारी के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि ईरान IAEA की 15 रिपोर्टों में अपनी प्रतिबद्धता और सद्भावना को साबित कर चुका है। उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन सरकार सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 का पूरी तरह से पालन करके ईरानियों के खिलाफ ट्रंप के आर्थिक युद्ध को समाप्त करती है और अपनी सद्भावना इस प्रकार से साबित करती है, तो ईरान भी क्षतिपूर्ति के लिए अपनाई गई युक्तियों को परमाणु समझौते के अंतर्गत लौटा देगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अनावश्यक सूचनाएं जारी करने के संबंध में तेहरान ने IAEA को चेतावनी दी है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए ईरान के दूत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अनावश्यक सूचनाएं जारी करने से परहेज करने की मांग की। काजिम गरीबाबादी ने गुरुवार को IAEA के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में प्रमुख ईरानी परमाणु और रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या की बिना शर्त और पारदर्शी रूप से निंदा करने की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि इस आतंकवादी हमले में ज़ायोनी शासन के शामिल होने के मजबूत और स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। काजिम गरीबाबादी ने जोर देकर कहा है कि IAEA और उसके सदस्य देशों पर ईरान के संबंध में एक तत्काल और मूल जिम्मेदारी है जो अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के सबसे ज्यादा निरीक्षण की अनुमति देता है, लेकिन दूसरी ओर उसके वैज्ञानिक या तो खतरे में हैं या मारे जा रहे हैं, जैसा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान भी या तो खतरे में हैं या उनके खिलाफ विध्वंसक कार्रवाइयां की जा रही हैं। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु व रक्षा वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर फखरीजादे की हत्या के बारे में कहा है कि यह कहना कठिन है कि हत्या तेहरान से उनके लेनदेन को कितना जटिल बनाएगी। जो बाइडेन ने पहली बार ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने शुक्रवार को CNN से बात करते हुए कहा कि यह कहना बहुत कठिन है कि इस हत्या में ईरान के साथ उनका लेन देन कितना जटिल हो जाएगा। उन्होंने ईरान के संबंध में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अंतिम बिंदु यह है कि हम ईरान को परमाणु हथियार तक न पहुंचने दें। ट्रंप समझौते से निकल गए ताकि कोई अहम चीज हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया? अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप की सरकार ने परमाणु पदार्थों के संबंध में ईरान की क्षमता को बढ़ा दिया। अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब का दुष्ट त्रिकोण इन दिनों जिस तरह की गतिविधियां दिखा रहा है, उससे सिर्फ यही लगता है कि क्षेत्र में प्रतिरोध के मोर्चे के खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो चुकी है। अमरीकी विदेश मंत्री पोम्पियो की मध्य पूर्व यात्रा और नेतन्याहू व बिन सलमान से उनकी मुलाकात के ठीक बाद ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या की गई। अब कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और उनके सलाहकार जेरेड क्रुशनर भी इसी हफ्ते पश्चिमी एशिया के इलाके का दौरा करने वाले हैं। क्या इस दौरे के पीछे भी, जैसा कि कुछ विश्लेषकों का कहना है, इस्लामी गणतंत्र ईरान और क्षेत्र में इस्लामी प्रतिरोध के खिलाफ कोई साजिश है, या ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह की कोई साजिश है? अमरीकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इसराइल के एजेंटों ने मारा है, अमरीकी राष्ट्रपति के सलाहकार इस हफ्ते मध्य पूर्व की यात्रा करने वाले हैं। मानवाधिकार, मानवता प्रेमी सहायताओं और विदेश नीति के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिका के 80 से अधिक संगठनों ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने बाइडेन से मांग की है कि वे वाशिंगटन की ओर से यमन युद्ध के समर्थन को खत्म कर दें। यमन में मानवीय त्रासदी उत्पन्न होने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद अमरीकी सरकार की ओर से सऊदी अरब को दिए जा रहे हथियारों में वृद्धि के साथ ही 80 से ज्यादा अमरीकी संस्थाओं व संगठनों ने निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि वे अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में अमरीका की ओर से यमन युद्ध के शर्मनाक समर्थन की समाप्ति को शामिल करें। इस खत पर दस्तखत करने वालों ने इसी के साथ ये भी कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में काम शुरू करने के बाद बाइडेन को सऊदी गठजोड़ का समर्थन जारी रखने के लिए देश विदेश से विरोध का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के शहर लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के 4 अन्य नेताओं को आतंकियों की आर्थिक मदद या टेरर फंडिंग के मामले में सजाएं सुनाई हैं। पाकिस्तान की एक अदालत पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत के जज ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में एक प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के नेता जमात उद दावा के नेताओं को 15.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने हाफिज अब्दुस्सलाम सहित इस समाचार को फिर से सुनिएगा। पाकिस्तान के शहर लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के 4 अन्य नेताओं को आतंकवादियों की आर्थिक मदद या टेरर फंडिंग के मामले में सजाएं सुनाई हैं। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के नेता हाफिज अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद, प्रोफेसर हाफिज अब्दुलरहमान मक्की और मोहम्मद अशरफ को 15.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने हाफिज अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद, प्रोफेसर जफर इकबाल को 15.5 साल की सजाएं सुनाई हैं। भारत ने कनाडा से नाराजगी जताते हुए इस देश के उच्चायुक्त को तलब किया है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान से नाराज भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायुक्त को भारत के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। विदेश मंत्रालय में उन्हें बताया गया कि देश के आंतरिक मामलों में कनाडा का हस्तक्षेप सहन योग्य नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय में कनाडा के उच्चायुक्त से कहा गया कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की टिप्पणियां भारत के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप हैं जिसे सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बात का कनाडा और भारत के संबंधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। भारत का कहना है कि इन्हीं टिप्पणियों ने कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के बाहर चरमपंथी गतिविधियों की सभाओं को भी प्रोत्साहित किया है। याद रहे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत में जारी किसान प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकारों की हमेशा रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा था कि भारत में किसान प्रदर्शनों के कारण स्थिति चिंताजनक है। दूसरी ओर कनाडा के रक्षा मंत्री ने भी भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
तो राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। भारत नियंत्रित कश्मीर में नमाज जुमा के बाद ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादे की शहादत के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। तीन दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर फिलिस्तीनी विकलांगों ने भी विश्व समुदाय के सामने अपनी मांगे रखी। वास्तव में ये वो दिन है जब गजा पट्टी के विकलांगों ने भी स्वाभाविक जिंदगी शुरू करने के लिए अपने कानूनी अधिकारों की मांग की। अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया के मध्य 44 दिन तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ, परंतु अंत में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौते के अनुसार आर्मेनिया ने अजरबैजान के उन कई क्षेत्रों को वापस कर दिया जिन पर उसने कब्जा कर रखा था। श्रोताओ, भारत नियंत्रित कश्मीर में नमाज जुमा के बाद ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादे की शहादत के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। वरिष्ठ कश्मीरी धर्मगुरु सैयद आबिद हुसैन ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों से एकता का आह्वान किया। श्रीनगर से सिफ्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित कश्मीर के तमाम केंद्रीय स्थानों पर धार्मिक दल उजमन शरी शियान के आह्वान पर इस्लामी गणतंत्र ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद मोहसिन फखरी जादे की शहादत पर जोरदार प्रदर्शन हुए। नमाज जुमा के तुरंत बाद लोगों ने इस कत्ल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि हम अपने गम गुस्से का इजहार भी करते हैं और ये बताना चाहते हैं हम इससे डरने वाले नहीं हैं। श्रीनगर के आबी गुजर में उजमनी शरी शियान के एक दिग्गज नेता आगा सईद आबिद हुसैन मौसवी ने जुमा भाषण में लोगों पर बल दिया कि वो एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि विश्व भर में जिस तरह से इस्लाम विरोधी ताकतें एकजुट हुए हैं, जरूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान भी एकजुट हो जाएं। उन्होंने अरब देशों की निंदा करते हुए कहा कि अरब देशों ने मुसलमानों का जिराजा बिखेर कर रख दिया है। षड्यंत्रों को सफल बनाने में जिस तरह अरब देशों के कुछ लोग साहित्यकार बन रहे हैं वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। नमाज जुमा के तुरंत बाद लोगों ने अपना जोरदार एहतजाज भी बुलंद किया। इस बीच श्रीनगर के हसनाबाद, बडगाम, बेमना, सजादाबाद, छतबल और अन्य स्थानों से भी जो समाचार प्राप्त हुए हैं वहां पर भी इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के हवाले से तमाम राजनीतिक दल अपनी ओर से लोगों को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में भाजपा ने भी इस हवाले से अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
श्रोताओं, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर फिलिस्तीनी विकलांगों ने भी विश्व समुदाय के सामने अपनी मांग रखी। वास्तव में ये वो दिन है जब गजा पट्टी के विकलांगों ने भी स्वाभाविक जिंदगी शुरू करने के लिए अपने कानूनी अधिकारों की मांग की। ज्ञात रहे कि इसराइल ने वर्ष 2007 से गजा पट्टी का कड़ा प्रवेशन कर रखा है, जिससे फिलिस्तीनी अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित हैं और मानवाधिकारों का राग अलापने वाले देशों, संगठनों और संस्थाओं ने अर्थपूर्ण चुप्पी साध रखी है। इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कमर अब्बास।
3 दिसंबर को विकलांग दिवस है। ये वो दिन है जब गजा पट्टी के लोग स्वाभाविक जिंदगी शुरू करने के लिए अपने कानूनी अधिकारों की मांग करते हैं। यह ऐसी स्थिति में है कि जब अतिग्रहणकारियों ने मार्गों को बंद करके उन्हें अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित कर रखा है। ज़ायनियों ने जहां एक ओर इन वर्षों में बहुत से फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है और उनमें से बहुत से अपंग हो गए हैं, वहीं उन्होंने फिलिस्तीनियों का परिवेष्टन भी कर रखा है। यह ऐसी वंचिता है जिसका मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले संगठन भी कुछ करने के बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून ने हमारे अधिकारों को सुनिश्चित बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी, जिस पर 2014 में फिलिस्तीनी प्रशासन ने भी हस्ताक्षर किया है, स्पष्ट किया गया है कि सबका कर्तव्य है कि अपंग लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करें ताकि ये लोग उचित जीवन गुजार सकें। एक फिलिस्तीनी महिला का कहना है कि इसराइल ने इस क्षेत्र के खिलाफ जो अत्याचारपूर्ण युद्ध किया है और जो परिष्ठन कर रखा है, उसके कारण विकलांग फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत अधिक है और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। गजा पट्टी के विकलांगों ने अपनी शक्ति व इरादे को दिखाने के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतियोगिता आयोजित की और ये लोग अपनी आवाज को फिलिस्तीनियों के समर्थकों यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमेशा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते और उनकी मांगों की अनदेखी करते रहते हैं। हम अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं। हम व्यायाम करने वाले लोग हैं, किंतु हमें कोई संभावना नहीं दी जाती, कोई सुविधा नहीं दी जाती। हम में से हर एक की अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं। इंशाल्लाह प्रतिबंध समाप्त होंगे और हम विकलांग लोग अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे और विश्ववासियों को दिखा देंगे कि हम कितना मजबूत इरादा और संकल्प रखते हैं, इंशाल्लाह। इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर ज़ायनी अत्याचारों से पीड़ित फिलिस्तीनी विकलांगों ने अपने मूल अधिकारों की मांग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाली संस्थाओं का आह्वान किया है कि कम से कम एक बार वे अपनी चुप्पी तोड़ दें और ज़ायनी शासन के मुकाबले में खड़े हो जाएं, जो हमें उपचार के लिए जाने और यात्रा करने से रोकता है। IRIB के लिए गजा फिलिस्तीन से इब्राहिम अहमद।
श्रोताओ, अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया के मध्य 44 दिन युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों का काफी नुकसान हुआ, परंतु अंत में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौते के अनुसार आर्मेनिया ने अजरबैजान के उन कई क्षेत्रों को वापस कर दिया जिन पर उसने कब्जा कर रखा था। आर्मेनिया के इस कदम के खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शन भीषण रूप धारण करते जा रहे हैं। साथ ही कायम रिजवी,
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिमियान के विरोधियों ने यरवान में प्रदर्शन करके उनके त्याग पत्र की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने गत रात यरवान की सड़कों को बंद कर दिया और इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया है। पाशिमियान ने सांसदों, यहां तक कि इस देश के राष्ट्रपति से विचार विमर्श किए बिना ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि पाशिमियान ने कहा है कि उनका उद्देश्य देश में पूरी तरह से शांति स्थापित करना है। अपने पद से हटने का उनका अभी कोई इरादा नहीं है। अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य 44 दिन के युद्ध के बाद इन दोनों देशों और रूस के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके नतीजे में आर्मेनिया ने अजरबैजान के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उसे उसने अजरबैजान के हवाले कर दिया। ये ऐसा विषय है जिसका आर्मेनिया के अंदर बहुत ही कड़ा विरोध किया जा रहा है, जो कई दिनों से जारी है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पाशिमियान के विरोधियों ने अपने विरोध के दायरे को बढ़ा दिया है इस बात के दृष्टिगत कि आर्मेनिया में आपातकाल खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में हम इस देश में और अधिक तनावग्रस्त स्थिति के साक्षी रह सकते हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन भी शामिल है। यरवान से IRIB के लिए जॉर्ज इब्राहिमी की रिपोर्ट।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्ट वे में 41 मीटर बैंड बराबर 7445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना ना भूलें, पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर, पर उससे पहले आप सुनिए अपना मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। और हमेशा की तरह आज भी आपके कुछ पत्र या ईमेल और कमेंट्स हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो दीदी, सबसे पहले क्या शामिल होगा आज कार्यक्रम में?
ईमेल है आनंद मोहन बैन का, लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी लोग कोरोना से सेफ होंगे। मैंने आपके कार्यक्रम सुने, कुरान से तिलावत और उसका अनुवाद सुना। समाचार में कोरोना के नए मामलों पर चर्चा, गायम रिजवी के समाचार सुने। किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। जो भक्ति दूसरे धर्म के प्रति अनादर की भावना रखती है, वे अपने धर्म को भी प्रेम नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है
जी।
आपकी वेबसाइट में सामग्री पुरानी है, इसे अपडेट करें। पत्र संसार को भी अपडेट करें। दूसरे सर्विस नियमित अपडेट करते रहते हैं। कार्यक्रम ऐप में नहीं सुनाई दे रहा है और QSL कार्ड भेजने का कष्ट करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद मोहन बाइन जी। ईश्वर की कृपा से और आप श्रोताओं की दुआओं से हम सभी यहां पर सुरक्षित हैं और कोरोना से सेफ हैं आपके शब्दों में। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, बल्कि पूरी मानवता दुनिया में जहां कहीं भी जितने लोग हैं, सब कोरोना से सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द इस वायरस का दुनिया से खात्मा हो जाए और जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द बनकर आ जाए ताकि सभी लोग इससे सुरक्षित रहें। आपने एक बहुत अच्छे बिंदु की तरफ इशारा किया है कि किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। इस्लाम भी इस पर बहुत अधिक बल देता है। सारे ही धर्म यही बात कहते हैं कि दूसरों का और दूसरों के धर्मों का अनादर न किया जाए। लेकिन क्या किया जाए कि अब कुछ देशों में, विशेषकर पश्चिमी देशों में, इस्लाम के अनादर को फैशन समझ लिया गया है। इस्लाम का अनादर किया जाता है, इस्लाम की जो पवित्र हस्तियाँ हैं पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अनादर किया जाता है। और फिर ये जो अनादर होता है, इससे कुछ लोगों के दिल दुखते हैं और जो अतिवादी लोग होते हैं, जो सहन नहीं कर पाते हैं, वो कुछ जवाबी हमले करते हैं
जी।
तो ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उचित यही होगा कि कोई भी किसी के भी धर्म का अपमान और अनादर न करे। आपने वेबसाइट पर सामग्री पुराने होने की बात लिखी है, तो ठीक है, आपकी बात नोट कर ली गई है और संबंधित विभाग तक आपकी शिकायत पहुंचा दी जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द ही जो हमारी वेबसाइट है उस पर सामग्री बदल दी जाएगी
जी। अगला ईमेल है JR सोलंकी का, लिखते हैं कि मुझे आपके रेडियो तेरान से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मन लगाकर आपके सभी प्रोग्राम सुनता हूं और साथ ही प्रतिदिन आपकी वेबसाइट पर भी भ्रमण करता हूं, जहां पर बहुत सी रोचक लाभदायक खबरें और जानकारियां सुनकर मेरा बहुत ही ज्ञानवर्धन होता है। मुझे शुक्रवार का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। पत्र संसार कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों और टिप्पणियों के संतोषजनक जवाब आपके मुख से सुनकर मेरा मन बहुत हर्षित हुआ।
آپ ہمیشہ سوستھ رہے اور مسکراتے رہے، ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
جی آر سولنکی جی، بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے لیے اس طرح کی کامنائیں کرنے کے لیے۔ ہم بھی جواب میں آپ کے لیے یہی کامنا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے جیون میں ہمیشہ سدا ہنستے مسکراتے رہیں۔ کاریکرم آپ کو اچھے لگے یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ویب سائٹ سے آپ کو لابھ پہنچ رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سنتوش کی بات ہے۔ وشیش روپ سے آپ نے کاریکرم پتر سنسار کا الیکھ کیا ہے، ہم آپ کے آبھاری ہیں اور چاہیں گے کہ اسی طرح آپ ای میل کے مادھیم سے یا کمنٹ کے مادھیم سے ہمارے کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچار ویکت کرتے رہیں۔
تو دوستو، اب باری ہے ایرانی سنسکرتی سے جڑی ایک خبر کی، اور یہ خبر ہے کورونا کے بارے میں، جو یہاں پہ شہید ہو رہی ہیں نرسیں
اور جو ڈاکٹر ہیں،
جی جی اس کے بارے میں،
میڈیکل ٹیم۔
جی، 16th ریزسٹنس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نے ڈیفینڈر آف ہیلتھ مارٹی مریم رحیمی کو شردانجلی دی ہے، اور 16th ریزسٹنس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے جن سمپرک اور سوچنا کیندر کے پرمکھ سید احد مکائل زادے نے کہا کہ کورونا وائرس کے کارن اپنی جان گنوانے والی ایرانی نرس مریم رحیم کی یاد میں سینیماٹک کاریکرم آیوجت کیا گیا ہے۔ مکائل زادے نے کہا کہ اس ایرانی مہیلا کو کورونا وائرس کے روگیوں کا مقابلہ کرنے میں اپنے بلیدان کے لیے یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہان شہید کی ذمہ داری اور بلیدان کی بھاونا اتنی مہان تھی کہ جب وہ 7 مہینے کی گربھوتی تھی تب بھی اس نے اسپتال میں سیوا پردان کرنے کے کھیتر میں اپنا کام جاری رکھا جب تک ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ مہوتسو کے دوسرے بھاگ میں ریزسٹنس پرومیننٹ مارٹیر اسپیشل سیکشن، نرپیکش بھاونا میں سروشریشٹھ فلم پرتیوگتا، نریشن اور پٹکتھا لیکن کو کور کر رہا ہے۔ مہدی اعظمی میرآبادی کی ادھیکشتا میں مہوتسو کا دوسرا کھنڈ 21 سے 27 نومبر 2020 کو آیوجت کیا گیا۔
بہت بہت دھنیواد دیدی، بہت اچھی خبر آپ نے سنائی۔ پوری دنیا میں جو کورونا فائٹرز ہیں، کورونا سے فرنٹ لائن پر جا کر لڑ رہے ہیں، وہ میڈیکل کھیتر سے ہی سمبندھت ہیں، ہم ان سب کو سیلیوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ہماری منو کامنا ہے کہ کورونا فائٹرز پوری دنیا میں اس گھاتک روگ سے سرکشت رہیں۔
بھیا، اب مڑتے ہیں کمنٹس کی طرف۔
جی،
اور یہ ہے، امریکہ کی راجنیتک ویوستھا کا انت نشچت ہے، اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا۔ اس پر اعجاز خان لکھتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت بدل گئی، اگر امریکہ سدھارنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اور موقع دینا چاہیے، فساد کو ختم کرنا چاہیے۔ میں آشا کرتا ہوں کہ اب امریکہ کی حکومت مسلمانوں پر ظلم نہیں کرے گی۔
بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز خان صاحب ہمارے سماچار پر کمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، امریکہ کی جو نیتی ہے مسلمانوں کے سمبندھ میں، اس میں کوئی پریورتن آنے والا نہیں ہے، میں آپ سے ابھی سے کہہ رہا ہوں۔ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، جس طرح سے ٹرمپ مکھر ہو کر ورودھ کر رہے تھے مسلمانوں کا، شاید بائیڈن اس طرح سے نہ کریں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں جو نیتی ہے وہ سرکار بدلنے سے نہیں بدلتی ہے۔ وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں، وہ انہوں نے ایک ٹھوس نیتی اپنا رکھی ہے کہ انہیں، بہرحال چونکہ اسلام سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے انہیں جو مسلم راج ہیں، مسلم دیش ہیں، انہیں کمزور بنانا ہے۔ تو ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن بھی کریں گے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایران کے سمبندھ میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ٹرمپ چلے جائیں گے تو ایران سے دشمنی ختم ہو جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلامی کرانتی کو سفل ہوئے 40 سال سے زیادہ کا سمے ہو چکا ہے، اور تبھی سے ایران کے ساتھ نرنتر دشمنی جاری ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس کی سرکار ہو، چاہے ریپبلکنس کی سرکار ہو، دونوں ہی سرکاریں آتی جاتی رہی ہیں، لیکن ایران سے دشمنی کم نہیں ہوئی ہے۔ तो इसी तरह से मुसलमानों के संबंध में भी इनकी जो मूल नीति है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हो सकता है कि दिखावे के लिए ऊपरी सतह पर कुछ परिवर्तन आ जाए।
जी, समाचार और मनोरंजन वेबसाइटों को लेकर मोदी सरकार का तानाशाही फरमान, क्या केंद्र सरकार की कमियों को दिखाना अपराध है? इस पर मुस्तफा लिखते हैं, इंडिया में इलेक्शन बेल पेपर पे क्यों नहीं हो रहा है? सुपर पावर अमेरिका में ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों नहीं? इसका मतलब ईवीएम मशीन में धांधली हो सकती है।
मुस्तफा साहब, देखिए ये जो बहस है ये काफ़ी दिनों से चल रही है, पिछले लगभग 8-10 साल से, और भारत के बड़े बड़े राजनेताओं ने इस पर चर्चा की है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान नहीं होना चाहिए। जापान जहां से इस तरह की मशीनें आती हैं वहां पर भी बैलेट के माध्यम से ही चुनाव आयोजित होता है, मतदान होता है। अमेरिका सुपर पावर है, वहां पर भी बैलेट बॉक्स बनाया जाता है, लोग हाथों से वोट डालते हैं। लेकिन भारत में बहरहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि ये संभव नहीं है और ईवीएम के माध्यम से ही मतदान होगा। हालांकि भारत में बहुत सारे दल इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि भविष्य में कुछ सिस्टम ऐसा आएगा कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सकेगा, या फिर ईवीएम को अलग रख कर हाथों से वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, अब बारी है अपने एक श्रोता के विचार जानने की। तो इस सप्ताह हमारे कौन से श्रोता अपने विचार अन्य दोस्तों को सुना रहे हैं ये बताएंगे दीदी।
जी, भारत से दिलशाद हुसैन बता रहे हैं।
मैं दिलशाद हुसैन ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं रेडियो तेहरान का ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ तो ठीक नहीं होगा, आप लोग तो जानते हैं। वैसे तो मैं उर्दू सर्विस का लिसनर हूँ, फिर भी हिंदी सुनता हूँ। वही कार्यक्रम तो हमको हिंदी में सुनने को मिलते हैं। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी सेवा में कोई कमी नहीं, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, हृदयस्पर्शी हमें लगता है। हमें अपने दीन के बारे में बहुत मालूमात उनको रेडियो तेहरान से मिलती है, जो हम नई कुछ ऐसी जानकारी हमको मिलती है जो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम रेडियो तेहरान को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बस हमारी एक ही परेशानी है, हम तो रेडियो सुनते हैं, नेट से सुनते नहीं हैं, कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती।
वेबसाइट देखते हैं आप हमारी?
नहीं नहीं, हम साइट नहीं देखते, मध्य परिवार के हैं, रेडियो ही सुनते हैं।
ये थे हमारे श्रोता दिलशाद हुसैन, जो रेडियो तेहरान के कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। और यहीं पर मैं अन्य श्रोताओं से भी कहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनके विचार रेडियो तेहरान से प्रसारित हों तो वो व्हाट्सएप पर अपने विचार रिकॉर्ड करके हमें भेज दें।
मैं नंबर भी बता दूं, व्हाट्सएप का नंबर बता देती हूँ।
जी,
0098903506592।
तो जैसे ही आपकी ऑडियो क्लिप हमें मिलेगी तो उसे हम नंबर में लगा देंगे बहरहाल, और जब आपका नंबर आएगा तो उसे भी प्रसारित किया जाएगा। दीदी, हमारे पास अब समय नहीं बचा है तो श्रोताओं से विदा लेना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार का समय यहीं पर समाप्त होता है। अपनी दीदी मरियम मेहरदादी और भैया सन अब्बास को अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ وگیان کی ڈگر۔
دوستو، کارکرم وگیان کی ڈگر کی کنیکڑ کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، ایران میں ویگیانک شیتر میں اب بہت تیزی سے نئے پریکشن کیے جا رہے ہیں۔ یہ پرکریا اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد سے بہت تیز ہو چکی ہے۔ ایران کے علم اور صنعت وشودیالے تتھا شیراز کے وشودیالے کے شودھ کرتاؤں نے اپنے سنیکت شودھ میں ایک نئی اپلبدھی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے سنیکت پریاسوں سے کینسر گرست کوشکاؤں کو مارنے میں سکشم کاربن اور لیزر نینو ٹیوب بنانے میں سفلتا ارجت کی ہے۔
دنیا بھر میں پھیلے کینسروں میں اسکن کینسر کا بھاگ لگ بھگ 75% بتایا جاتا ہے۔ کینسر کے جتنے بھی پرکار ہیں ان میں سب سے ادھک پرچلت کینسر اسکن کینسر ہے۔ پیرا بینگنی کرنوں کے ادھک سمپرک میں آنے کے کارن اسکن کینسر کا خطرہ ادھک بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ اسکن کینسر سے گرست مریضوں کا سامانیتہ اپچار تو ہو جاتا ہے، کنتو اس کے ادھک پھیلنے کے کارن لوگوں میں اس بارے میں بہت چنتائیں پائی جاتی ہیں۔
ایک ایرانی شودھ کرتا کا کہنا ہے کہ اس شیلی میں کاربن نینو ٹیوب کو ایک پرکار کے بایو ڈی گریبل اور بایو کمپیٹیبل پالیمر کے ساتھ لیپت کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان لیپت نینو کرنوں کو ٹیومر میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ کاربن نینو ٹیوب میں انجیکٹ کیے گئے لیزر بیم کے وکرن ان نینو کرنوں کو اوشما میں پریورتت کرنے کا کارن بنتے ہیں، جو کینسر کے ٹیومر کو نشٹ کرتے ہیں۔ کاربن نینو ٹیوب کی ایک وشیشتا ہے کہ ان میں افشوشن کی اچ شمتا پائی جاتی ہے۔ کینسر کے علاج کی یہ شیلی چکتسک کو علاج میں بہت سی سویدھائیں اپلبدھ کراتی ہے، اور انیہ شیلیوں کی تلنا میں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہی کم ہوتے جاتے ہیں۔
اسی پرکار سے ایرانی شودھ کرتا بھی حال ہی میں بہت ہی کم لاگت والے ایک ایسی سٹیک پدھتی کے پریوگ میں سفل ہوئے جو رکت، موتر اور پلازما جیسے جیوک ترل پدارتھوں میں موجود چھوٹی ماترا میں دواؤں کی پہچان کرنے میں سکشم ہے۔ جیوک ترل پدارتھوں میں کم ماترا میں دواؤں کا نردھارن شریر کے بھیتر دواؤں کے کاریہ پربھاؤ کو ماپنے تتھا ملانکن کرنے کے مہتوپورن مدوں میں سے ایک ہے۔ نمونہ تیار کرنے کے لیے پریوگ کی جانے والی ایل ایل ای اور ایس پی ای شیلی عام طور پر مہنگی ہوتی ہے اور اس میں ادھک سمے بھی لگتا ہے۔ شودھ کرتا سدے وہی ویگیانک پریوگ کے لیے پربھاوی طریقوں کی کھوج میں رہے ہیں۔
ایک انیہ ویگیانک اپلبدھی کے روپ میں ایرانی ویگیانکوں نے امریکی شودھ کرتاؤں کے ساتھ مل کر ڈبہ بند پدارتھوں کے بھیتر 20 سیکنڈ کے اندر نینو تکنیک کا اپیوگ کرتے ہوئے وشاکت پدارتھ کی پہچان کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ورتمان سمے میں گیان وگیان व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के बढ़ जाने के कारण खाना पकाने के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में भोजन तैयार करने का सबसे सरल तरीका डिब्बा बंद पदार्थों के प्रयोग को माना जा रहा है। खाद्य पदार्थों और चिकित्सा क्षेत्र में शोध करने वालों के अध्ययन ये बताते हैं कि लंबे समय तक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के प्रयोग से मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही हानिकारक और कई प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देने वाला होता है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ में एक चीज होती है बिस्मेनॉल ए। इस शोध का उद्देश्य डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों में पाए जाने वाले इसी खतरनाक पदार्थ की निगरानी करना है। इस शोध में कम कीमत और तेजी से काम करने वाले जैव नैनो सेंसर को डिजाइन करने का ये प्रयास किया गया है ताकि इसके माध्यम से पिछली तकनीकों की कमियों को दूर किया जा सके।
विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ईरानियों ने कुछ नई उपलब्धियां भी अर्जित की हैं, जिनमें जापान में आयोजित विश्व कंप्यूटर एवं विश्व जीव विज्ञान ओलंपियाड में भाग लेने वाली टीम का प्रथम स्थान प्राप्त करना है। इस प्रतियोगिता में ईरान की 16 टीमों ने भाग लिया था। ईरान की कज़वीन ओपन यूनिवर्सिटी की MRL टीम ने चैम्पियनशिप जीत ली। ईरान की यज़्द यूनिवर्सिटी की टीम भी रोबोट लीग में प्रथम स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में तबरेज यूनिवर्सिटी भी पदक जीतने वालों में शामिल थी।
ईरान के रोयान फर्टिलिटी सेंटर के प्रमुख ने बताया है कि इस केंद्र में विदेश के 2500 निसंतान जोड़ों ने अपना उपचार करवाया। रोयान फर्टिलिटी सेंटर कई दशकों से अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले ये ईरान के यज़्द नगर में सक्रिय था, किंतु अब राजधानी तेहरान में भी लंबे समय से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस केंद्र की स्थापना से पहले वे दंपत्ति जिनकी संतान नहीं होती थी अपने इलाज के लिए यूरोपीय देशों और अमरीका की यात्रा करते थे। इस फर्टिलिटी सेंटर की स्थापना के कुछ ही समय के बाद ईरान ने न केवल ये की समस्या के समाधान में आत्मनिर्भरता पाई बल्कि अब यहाँ पर विदेशों से दंपत्ति आकर अपना इलाज करवाते हैं।
ईरान के फर्टिलिटी सेंटर में निसंतानों के उपचार के समय धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक सभी प्रकार के मुद्दों को दृष्टिगत रखा जाता है। एक विशेष बात यह है कि ईरान में मौजूद फर्टिलिटी केंद्र में किए जाने वाले उपचार की लागत अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत ही कम है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और फारस की खाड़ी के देशों से मरीज अपने इलाज के लिए ईरान आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ईरान में फर्टिलिटी के इलाज में होने वाला खर्च पश्चिम की तुलना में एक तिहाई है।
एक अन्य वैज्ञानिक समाचार ये है कि अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक प्री क्लिनिकल परीक्षण में पहली बार मानव शुक्राणुओं में होने वाली बीमारी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को शरीर के भीतर ही उसका उपचार करने में सफलता अर्जित की है। ये बीमारी मनुष्य के हृदय की मांसपेशियों से संबंधित है। इस प्रकार से इस जीन के बाद वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया क्रिस्पर-कास 9 नामक ये संशोधन उपकरण एड्स और बच्चों की मांसपेशियों की कमजोरी दूर करने में काफ़ी हद तक आशाजनक है। इस उपकरण का मुख्य लक्ष्य बीमारियों की रोकथाम करना है। इस अनुसंधान के प्रभारी ने बताया है कि ये नया शोध अनुवांशिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ में काफ़ी वृद्धि करता है।
दोस्तों, फ्रांस के पास्चर शोध केंद्र के शोधकर्ताओं ने अपने एक वैज्ञानिक अध्ययन में इस बात का पता लगाया है कि कुछ स्टेम कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो मरे हुए व्यक्ति में दो सप्ताह से अधिक समय तक निष्क्रिय रहकर पुनः सक्रिय हो सकती हैं। ये विभाजित हो सकती हैं और नई कोशिकाएं पैदा करने में सक्षम भी होती हैं। इससे पहले तक ये मान्यता थी कि ये प्रक्रिया मरने वाले के मात्र एक या दो दिनों तक ही रह सकती है। शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि मांसपेशियों की स्टेम कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में किस सीमा तक ही जीवित रह पाती हैं। अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं के अध्ययन से ये भी ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार के स्टेम सेल मृत्यु के चार दिनों के बाद तक जीवित रह सकते हैं।
फ्रांस के वनस्पति वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी वनस्पति की खोज की है जो 140 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये वनस्पति कमल जैसी दिखाई देती है। इसके बारे में ये दावा किया गया है कि वो संसार में वर्तमान समय में पाए जाने वाले सभी फूलों की पूर्वज है। इस वनस्पति के बारे में गहन खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी पंखुड़ियों की व्यवस्था बहुत ही सरल है और इनमें नर तथा मादों जैसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। इस वनस्पति ने पर्यावरण एवं जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव डाला तथा परागमन करने वाले बहुत से कीटाणुओं के तेज विकास में सहयोग किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि फूलों वाली वनस्पतियों का अस्तित्व डायनासोर के काल से संबंधित माना जाता है। इन वनस्पतियों ने उसी समय जन्म लिया और धरती को नया सुंदर रूप दिया। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। मित्रों, हमारी आज की सभा आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib/hindi/। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अब हम अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।